ओम शांति, ओम शांति। सभी बाबा के इस बेहद ज्ञान सरोवर में ज्ञान और योग की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। बहुत अच्छा खुशनुमा वातावरण है, ठंडी हवाएं हैं। वास्तव में भट्टी का आनंद तो ऐसे मौसम में ही आता है। तो आप सब ऐसे सुंदर समय पर आबू की वादियों में पहुंचे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करके जाएंगे। अभी मैं दिल्ली गया था, वहां तो इतनी गर्मी थी, मैंने कहा कि आबू तो इसके भेंट में स्वर्ग लगा हुआ है। तो आप सब इस स्वर्ग भूमि, पावन भूमि पर तपस्या करने के लिए आए हैं, और बाबा ने हम सबको संगम युग पर सिद्धि स्वरूप बनने का वरदान दिया है। जो सोचो हो जाए, संकल्प भी सिद्ध हो जाए, हमारे बोल जो निकले वो भी सिद्ध हो जाए। लेकिन हमारे पास रिद्धि सिद्धि नहीं है। दुनिया में तो रिद्धि सिद्धि है, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र सीख लेते हैं, साधनाएं कर लेते हैं, जो कोई ना कोई उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बाबा ने हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर विधियां बताई, जिन विधियों पर अगर हम यथार्थ रीति से चलते हैं तो हमें सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों कहते हैं, बच्चे कभी कोई बात, कोई भी चीज बाबा से मांगना नहीं। मांगने वाले को कितना दिया जाता है। आप तो वारिस बच्चे हो, सिद्धि स्वरूप बच्चे हो। जो बाबा ने अनेकानेक विधियां बताई हैं, उन्हीं पर चलते चलो, सब प्रकार की सिद्धियां मिल जाएंगी। जब मुझे वरदान लिखने की सेवा मिली थी, जो नए बाबा के बच्चे हैं शायद उनको न पता हो, लेकिन 88 में बाबा हम बच्चों से, मधुबन वालों से खास अलग से मिलने के लिए आए थे, और पूरी रात मधुबन के भाई मिले, 140 भाई। शाम को 7 बजे बाबा के सामने एक एक आए, और सुबह 7 बजे तक 12 घंटे में 140 भाई मिले। तो सवेरे सवेरे दादी जी बाबा को विदाई देने के लिए आई, तो उस समय मैं सामने बाबा के बैठा था, क्योंकि मैं पूरी रात लिखा था। एक एक बच्चे को जो भी बाबा ने बोला था वो सब कुछ लिखा था। दादी ने मेरे को बुलाया अपने पास, उसी समय इधर जाओ, आज बाबा ने रात भर क्या किया। बहनों का भी साथ में टर्न था, बहनें रह गई, भाई ही 12 घंटे मिलते रहे। तो मेरे मुख से निकला, बाबा ने आज, दादी बाबा ने आज बहुत वरदान दिए, वरदान दिए। अच्छा, तुम जाओ भी तैयार होकर के, ये सब टाइप करके ले आओ। हाथ से लिखता था, तो जब टाइप करके ले आए, बहुत सारे, इतनी मोटी किताब जैसा था। पूरी रात बोला बाबा ने, बात की एक एक से। तो जब टाइप करके ले गए दादी जी के पास, तो कहती क्या करोगे इसको। तो हमने कहा, बाबा ने जिस बच्चे को जिसको बोला है उसको टाइप करके अच्छा फ्रेम करके फोटो मार्क लगा करके दे देंगे, वो अपने अपने ऑफिस में, अपनी जहाँ डिपार्टमेंट में लगा लेगा अपना फोटो। खाली बस इतनी बाबा की मेहनत को सिर्फ एक जगह बांध दोगे। अगर बाबा ने इतने वरदान दिए हैं तो तुम मुरली के नीचे वरदान लिखो, लेकिन नीचे वरदान का रूप तो बाबा ने बोला ही नहीं था, माना भाव के रूप में तो लाइन बोली नहीं। जैसे अभी मुरली के अंदर भाव के रूप में आता ना, विजयी भाव, सफलता मूर्त भाव, तख्त नसीन भाव, अंतर्मुखी भाव, बहुत सारे भाव रूप जो आता है। तो जब मैंने उनको सेट किया तो मुरली के नीचे अधिक तो नहीं लिखा जा सकता है, पूरा पेज तो नहीं लिख सकते, तो चार पांच लाइन में एक एक वरदान को सेट किया और 120 भाइयों के वरदान सेट करके 365 दिन एक साल चलाया। लेकिन जो उसमें पहली लाइन बनाई वो मैंने अपनी तरफ से सोच के बनाई, क्योंकि कोई भी वरदान अगर वरदाता हमें दे रहा है तो उसकी विधि बता रहा है, अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये वरदान मिल जाएगा। अगर किसी को बाबा के वरदान अपने जीवन में धारण करने हैं, वरदानी मूर्त बनना है, तो उसकी विधि क्या है बोलो भाई लोग, पुराने जो हैं बैठे हैं। वरदान जीवन में आ जाए और हम वरदानी मूर्त बन जाएं, उसकी विधि क्या है? वरदानी बहुत सिद्धि स्वरूप है ना आत्मा, ये जिसको बात करता है, जिसको देखता है, उसको वरदान मिल जाता है। क्या बोले, थोड़ा हाथ उठा के बोलो तो सुनाई देगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? बार बार रिवाइज करने से वरदानी बन जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। और मैंने क्या बोले, माताएं बोलो, ऐसे एक बोलो, एक पहले बोलो। ठीक है, प्रैक्टिकल स्वरूप होना चाहिए। वरदान में ही वो एक शब्द है, विधि है, सिद्धि है, दोनों चीजें। वरदान जो कुछ आपके पास है उसका दान करो तो वरदान मिल जाएगा। इसकी बहुत गहराई है। विधि है दान और सिद्धि है वरदान। अगर हम बाबा कई बार कहते हैं ना, मनसा से शक्तियों का दान करो तो मनसा शक्तिशाली बन जाएगी, वाचा से ज्ञान दान करो तो वाचा सिद्धि स्वरूप बन जाएगी, कर्मणा से गुणों का दान करो तो गुणवान गुणमूर्त बन जाओगे। तो सिद्धियां यही हैं। सिद्धियां वो नहीं है कोई चमत्कार के रूप में हमने कुछ कर दिया, लेकिन आत्मा दिव्यता संपन्न गुणमूर्त बन जाए, जो बोले वो हर एक के भलाई के लिए उसका कल्याण हो जाए, जो सोचे वो संकल्प उसके सिद्ध हो जाए, ये है वरदान। और इस वरदान की यही विधि है जो बाबा ने हम सबको दिया है, बहुत खजाने दिए ना बाबा ने, एक बच्चे को एक एक को माला माल बनाया है। इतना तो बाबा ने ज्ञान धन दिया, मुरलियों के द्वारा ज्ञान धन तो सबको मिल ही रहा है, हम जैसा धनवान तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन। जब यज्ञ में बेगरी पार्ट शुरू हुआ ना, से 1951 कराची से जब भारत आए तो सब कुछ खत्म हो गया, कोई मदद करने वाला नहीं था, जो लाए थे खा पी के पूरा कर दिया। आबू में वो पेपर शुरू हुआ 5-6 महीने में ही, ठंडी बहुत, गर्म कपड़े नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई पैसा नहीं, और खाने पीने का भी सामान खत्म। और लोग जो इनके संबंधी थे, जिन्होंने निमंत्रण देके बुलाया था, वो तो देखने लगे अब कैसे चलता है इनका यज्ञ, भगवान का यज्ञ कैसे चलाएगा। तो बाबा ने उसी समय अखबार में लिखवाया, लिखो बच्चे ओम मंडली, ओम मंडली कहते थे ना इनको, ओम मंडली द चेस्ट एंड द वर्ल्ड। बाबा का वो नशा था, लोग कह रहे इनके पास खाने पीने का नहीं, एक रुपया भी नहीं, और कहते हम तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, क्या है इनके पास। तो बाबा ने कहा बच्चे तुमको जो बाबा ने दिया है अविनाशी धन, ज्ञान गुण शक्तियों का धन, चरित्र का धन, इसका चिंतन करो, इसको दान करो। ये दान करोगे तो वो अपने आप आ जाएगा, उसकी थोड़ी परवाह करनी है ना। धनवान भोग बनने के लिए, संपत्तिवान भाव बनने के लिए संपत्ति का दान करना पड़ेगा, बिना दान किए संपत्ति नहीं आएगी। लेकिन जो अविनाशी संपत्ति बाबा से मिली है, उस संपत्ति का अगर हम दान करते हैं, आज हम ज्ञान दान कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं उससे गुण दान हो रहा है, तो उस दान से जो लोगों को प्राप्तियां होती हैं, उपलब्धियां होती हैं, उसके आधार से वो सहयोगी बन जाते हैं, मदद करते हैं, उनका जीवन बनता, उनका चरित्र निर्माण होता है। आज हम सब बाबा के कार्य में क्यों मददगार बने? हम कहते हैं चैलेंज से कि इतना बड़ा हमारा विश्वविद्यालय, कोई से मांगता नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, बाबा के बच्चे ही इस यज्ञ को चला रहे हैं, इतना बड़ा कार्य, इतने बड़े स्थान बनते जा रहे हैं, कौन कर रहा है? बाबा के बच्चे कर रहे हैं ना। हम अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, किसी से डिमांड नहीं है। और अगर हमारी सेवा कोई नहीं लेता है तो उसकी सेवा हम भी नहीं ले सकते। हम उसकी सेवा अगर कर रहे हैं, उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, फिर वो सहयोग देता है तो सहयोग सफल माना जाता है। इसलिए बाबा ने हम सब बच्चों को जो कुछ अविनाशी प्राप्तियां कराई हैं, पहले खुद को भरपूर करो, जितना जो उससे संपन्न है भरपूर है, और फिर वो दान करे तो देखो और भरपूर होता जाएगा। स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार से आज जो हमारा यज्ञ इतना प्रगति को पाया है, उसके पीछे हमारी दादियों की तपस्या है, त्याग है, और उन्होंने उसी विधि पूर्वक यज्ञ को आगे बढ़ाया है। जो कुछ कोई ने दिया, कुछ भी मिला, किसी ने ये नहीं कहा ये मेरा है, उस पर अपना अधिकार नहीं रखा। अगर हम सब कुछ बाबा के आगे समर्पित कर देते हैं तो हम बाबा के आगे समर्पित हुए तो बाबा भी हजार गुना हमारे ऊपर समर्पित होकर के रिटर्न करता है। विधि क्या है, सिद्धि क्या है, अब खुद सोचते जाना जो मैं कह रहा हूं। हम कहें हमें बाबा सब कुछ दे दे, बाबा कहता तुम ही थोड़ी मेरे बच्चे हो, मेरी तो दुनिया पूरे बच्चे हैं। अगर मैं एक को दूंगा दूसरा कहेगा क्या बाबा ऐसा करता है, इनको दिया मेरे को नहीं दिया। देता वो सबको है, लेकिन विधि बनाई है, जो उस विधि अनुसार चलता है उसको सब प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी विधि कौन सी है? हिम्मत। बाबा से कभी मांगना नहीं है बाबा मदद करेगा, बाबा ऐसे सहयोगी बनेगा, बाबा तो मैं ऐसे पर्सनल किसी को नहीं मदद करता। लेकिन एक नियम है, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप। हिम्मत का एक कदम आप उठा दो, हजार गुना मदद करने के लिए बाबा बन जाएगा। तो मदद लेने की, मदद एक सिद्धि है कि हर बात में भगवान इनको मदद कर रहा है। क्यों मदद कर रहा है? क्योंकि उसने विधि को अपनाया है, कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करता, हिम्मत रखता है, हम आगे बढ़ेंगे, बाबा हमारे साथ है, परिवार हमारे साथ है। हिम्मत का एक कदम बढ़ाया तो हजार गुना सबका सहयोग, सबकी मदद मिलने लगी। इसलिए संगम युग पर हम सब विधियों को सीखें, जितने भी वरदान आप सुनते हो रोज भाव के रूप में जो बात आ रही है उसके पीछे विधि लिखी हुई है। जैसे आज बाबा ने कहा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो, सन्मुख रहोगे तो क्या होगा, अंतर्मुखी बन जाओगे, विजयी बन जाओ, बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। लेकिन अगर सन्मुख रहोगे तो जिन बातों की आपकी चाहनाएं हैं वो सब पीछे पीछे आपके साथ परछाई की तरह आ जाएंगे। और अगर चीजों के पीछे भागोगे, इच्छाओं के पीछे भागोगे, तो परछाई के पीछे अगर परछाई की तरफ भागना शुरू कर दो तो परछाई और आगे बढ़ती जाएगी, वो प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए कोई भी प्राप्ति चाहिए तो बाबा के सन्मुख रहो, ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। उसके सन्मुख हैं तो सब प्राप्तियां अपने आप पीछे पीछे आ रही है। हमारी सब इच्छाएं पूरी कर दी बाबा ने। अगर हमने बाबा को पीट कर दिया तो जितनी इच्छाएं वो सब आगे आगे और हम उसके पीछे पीछे भागेंगे। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, जैसे इच्छाओं की विद्या ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, सब कुछ बाबा ने दे दिया, तृप्त कर दिया, भरपूर कर दिया, लेकिन मांगा नहीं, विधि पूर्वक चले। तो बाबा ने अमृत वेले से रात तक जो कुछ हम आत्माएं पार्ट प्ले कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, उसकी विधियां पहले बताई। पहली विधि आंख खुलते ही, अगर किसी आत्मा ने पहली विधि में आंख खुलते ही सामने बाबा को लाके कहा बाबा गुड मॉर्निंग, आंख खुलते ही पहले संकल्प में बाबा की याद आ गई, सारा दिन अच्छा हो जाएगा। नहीं तो कहते हैं किसका मुंह देख लिया जो बार बार ठोकर लग रही है, बार बार नुकसान हो रहा है। विधि बाबा ने बताई, बच्चे पहले संकल्प में मीठा बाबा, प्यारा बाबा, गुड मॉर्निंग करो, सन्मुक्त इमर्ज करके शक्ति लो, वरदान लो, फिर आपका दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा। जो कुछ सारे दिन में परीक्षाएं आने वाली हैं, पेपर आने वाले हैं, उनको वही आत्माएं क्रॉस कर सकती हैं, सहज सूली से कांटा बना करके क्रॉस कर सकती हैं, जिन आत्माओं ने ज्ञान धन सवेरे सवेरे पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कर लिया, माना मुरली सुन लिया। मुरली बाबा की वो विधियां बता रही है कि आने वाली हर परीक्षा का, हर परिस्थिति का समाधान मिल रहा है। अब कोई मुरली नहीं सुने, उस पर चिंतन ही नहीं करे, तो परीक्षाओं में वो सफल कैसे होगा, सिद्धि कैसे मिलेगी। विधियां बाबा ने सब सुना दी सवेरे अमृत वेले, और हम उसको मिस कर दें और फिर कहें हमको ये नहीं मिला, ये संकल्प किया कुछ नहीं हुआ। आप कोई भी कार्य किसी से कराना चाहते हैं, मुझे याद है पहले पहले जब 71 में विदेश सेवाओं के संकल्प चले थे, दादी ने कहा बाबा की आस थी कि विदेश में सेंटर खुलेंगे तो अभी सब तैयार हो जाओ। मीटिंग किया तो जब मीटिंग किया तो बहुत सारी चर्चा चली कि हमारा ज्ञान तो आदि सनातन देवता धर्म का है और हमारे धर्म की बहुत ऊंची धारणाएं हैं, अमृत वेले उठना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, रोज स्नान करना है, विदेश की कल्चर में तो कोई इसको समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। और सवेरे तो कभी शायद कोई नहीं भी रहा सूर्य का दर्शन किया हो, स्नान करने की तो बात ही दूर है, ठंडी बहुत पड़ती है, लोग सब मांसाहारी शराब सिगरेट वाले, हमारे ज्ञान को कैसे समझेंगे। तो आपस में चर्चा कर रहे थे तो विदेश सेवा के लिए जो ग्रुप जा रहा था बाबा के सामने छुट्टी लेने आया, तो बाबा ने बहुत प्यार से पूछा बच्चे जहां जा रहे हो उसकी सेवा की है? तो सब कहने लगे बाबा अभी जाके करेंगे, अभी कहाँ की है। बोला नहीं, पहले यहाँ बैठे बहुत पॉजिटिव संकल्प करो कि जहाँ जाएंगे वहाँ बाबा के बच्चे वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बहुत आएंगे। अपने आप सब समझेंगे जहाँ ब्राह्मणों के कदम पड़ते हैं वहाँ पर जरूर छिपे हुए रतन हैं, निकलेंगे। पहली विधि क्या हुई कि जिस कार्य के लिए, जिस सेवा के लिए जा रहे हो, पहले ये संकल्प नहीं करो वहाँ तो कोई सुनेगा नहीं, वहाँ तो लोग बड़े खराब हैं, बहुत पीने वाले हैं, खाने वाले हैं, झगड़ने वाले हैं। अब ये संकल्प आपने कर दिया और फिर आप वहाँ गए तो वैसा ही माहौल मिलेगा, क्योंकि आपने रच दिया, वहाँ बीज डाल दिया पहले से। तो बाबा ने विधि बताई कि आप यहाँ जाने के पहले यहाँ योग करो, मनसा सेवा करो, कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए या चले गए यहाँ से, भारत से, वो सब पीछे पीछे आएंगे। पहले से मनसा द्वारा उनका आह्वान करो, बहुत सकारात्मक चिंतन करो। हो ही ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ब्राह्मण जहाँ जाए वहाँ कोई भी बाबा का बच्चा न हो, निकलेंगे। अब ये विधि बता दी बाबा ने, एक विधि बताई, एक संदेश जी को साथ भेजा था जब ग्रुप दूसरी बार गया, तो शील इंदिरा दादी थी वो संदेशी थी, बाकी सेवादारी हमारी रोजी दीदी थी, उषा बहन थी, रमेश भाई, जगदीश भाई, निर्मला दीदी, ऐसे पांच सात का ग्रुप भेजा। तो अमेरिका में भेजा तो बाबा ने एक विधि बताई थी कि जब भी कोई सेवा के लिए निकलना तो पहले दो मिनट के लिए बाबा के कमरे में जाके, बाबा का कमरा बनाओ जाके, वहाँ पर एक फोटो रखो बाबा की, और जब भी कहीं सेवा के लिए जाना तो बाबा के कमरे में जाके दृष्टि लेके बाबा को साथी बना के, बाबा आप चलो ये काम के लिए, सेवा के लिए हम जा रहे हैं, ये विधि है, ध्यान देना। और इस विधि से अगर जाओगे बाबा को साथ लेकर के तो सफलता मिलेगी। एक दिन क्या हुआ, बहुत जल्दी कुछ थी, भूल गए विधि, फटाफट खाना खाया, पानी पिया, कितनी मंजिल ऊपर रहते थे मकान में किराए पर, उतर करके आए, कुछ भूल गए, माचिस भूल गए, माना जहाँ जाएंगे वहाँ कैंडल लाइटिंग होगी, माचिस भूल गए, फिर लेने के ऊपर गए, फिर ऊपर चढ़ करके गए, फिर वापस आए, फिर कुछ भूल गए, नीचे याद आया, फिर दूसरी बार गए वो चीज़ लेकर के आए, फिर नीचे आए, फिर कुछ भूले हुए थे और जल्दी जाना था उनको, और सामान सब चाहिए क्योंकि वहाँ सब तो मिलता नहीं कोई चीज़ें। तो संदेशी को बोला, बाबा को बोलो, बाबा ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाबा मुस्कुरा के बोलते, बच्चे तुमने विधि भूल गए, बाबा के कमरे में गई नहीं, पहले बाबा से छुट्टी नहीं ली और चल दिए ऐसे ही, इसलिए बाबा आप लोगों की परीक्षा ले रहा है। कोई भी कार्य बाबा की बिना स्वीकृति के, बिना उनसे छुट्टी लिए, बड़ों से आशीर्वाद लिए जा रहे हो तो सफल कैसे होगा। इसलिए आप हम सबको ये बात ध्यान रखनी है, केवल उस बात के लिए नहीं, ये तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ। आज आप किसी ऑफिस में जाते हो, कोई काम कराने के लिए जा रहे हो, और पहले ही सोच लो वो ऑफिसर तो बिना घूस लिए कोई काम करता ही नहीं है, वो तो बड़ा क्रोधी है, वो पहले को ऐसे फेंक देता है। अब भले वो कैसी भी नेचर वाला है, काम आपको कराना है, तो उसके नेचर को आप ध्यान पर रख करके क्यों जा रहे हो। आपका वो तो बड़ा अच्छा है, जरूर करेगा, ये श्रेष्ठ काम के लिए हम जा रहे हैं, अच्छे से अच्छा करेगा, अभी करके देगा। तो ये जो पॉजिटिव विचार आपके जा रहे हैं वहां पर, उस आत्मा को टच हो रहे हैं, और आप जाएंगे आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप आ जाएंगे वापस, जैसे संकल्प किया वैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो बाबा ने हम सबको सिद्धि स्वरूप बनने की ये बहुत छोटी छोटी विधियां बताई हैं, और इन विधियों को अगर ब्राह्मण आत्माएं पालन करें तो उनकी दृष्टि से, उनके बोल से, उनके हर कर्म से लोगों को सिद्धियां मिलेंगी, सफल बन जाएंगे, सफल हो जाएंगे। कहते हैं सत्य वचन महाराज, जो इसने बोला वो सत्य हो गया, सिद्धि स्वरूप है आत्मा। संगम युग पर जो पवित्र आत्माएं हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही हैं, जिनकी दुनिया में कहीं अटैचमेंट नहीं है, वैरागी हैं, वो आत्माएं इस समय सिद्धि स्वरूप बन सकती हैं। हम सब का बाबा के सिवाय और कोई से संबंध नहीं, एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं, भगवान से डायरेक्ट जुड़ी हुई आत्माएं कोई भी कार्य में सफल न हो ऐसा नहीं हो सकता, और नहीं हो रही हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं विधि ठीक नहीं है। विधि को सुधार लो, विधि ठीक कर लो, सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप दिखाई देने लगेंगी। कई बार हम परिवार वालों को ज्ञान में लाना चाहते हैं, हमारी माताएं कभी कभी सोचती हैं हम इनके लिए योग करें, शुभ भावना रखें, ये ज्ञान में चल जाए। एक दो दिन योग करेंगे फिर अंदर से ये तो सुधरेगा नहीं, ये तो रावण जैसा है, ये तो बदलेगा ही नहीं। कितनी इसके पीछे हमने मेहनत की है, अब 10 दिन तो मेहनत किया और 11वें दिन उसके पास नेगेटिव भेज दिया, ये सुधरेगा ही नहीं, वरदान हो गया उसके लिए। बहुत अटेंशन देना, जब पवित्रता को हमने अपनाया है, जब हमारा संबंध बाबा के साथ है, सर्वशक्तिमान के साथ है, जो वही संकल्प उठाओ जो होने वाले हैं, और कोई संकल्प क्यों कर रहे हो, नहीं होगा उसके बाद ड्रामा का ज्ञान हम यूज करेंगे। पहले से हम सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं, हमारा बाबा कौन है वो हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान साथ है। ब्राह्मण आत्माएं किसी कार्य के लिए जाएं और उन्हें सफलता न मिले, सिद्धि न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना अंदर का सम्मान होना चाहिए, इतना नशा होना चाहिए कि हम सब बाबा की याद में उनकी छत्र छाया के नीचे रहते हैं, उनको हम साथी बना करके चलते हैं। जो सबका दाता है वो हमारा बाबा हमारे साथ है, हमारा कोई भी संकल्प सिद्ध न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है, और बहुत सारी विधियां बाबा ने लिस्ट है, अगर आप सब वरदानों से भी लिस्ट निकालें ना तो बहुत सारी विधियां आपको मिल जाएंगी। मैं थोड़ी सी बताता हूं आपको। जैसे हमारे मार्ग में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। खास करके प्रवृत्ति में अगर एक ज्ञान में चलता है दूसरा नहीं चलता है तो बहुत रुकावट विघ्न डालता है, बंधन डालता है। योग के प्रयोग हम करना चाहते हैं, योग लगता नहीं। यथार्थ विधि को अपनाओ, जिस विधि के आधार से वो आत्मा अपने आप सहयोगी बन जाए। सब प्रकार के विघ्नों को खत्म करने की विधि क्या है माताएं बोलो, किसी भी प्रकार का विघ्न हो उस विघ्न को खत्म करने की विधि भाई लोगों ने क्या बोला, लगन। कहते हैं लगन लगी तो विघ्न खत्म। अगर बार बार विघ्न आ रहे हैं तो माना हमारी लगन पक्की नहीं है, लगन में कुछ कमी है। अब मीरा के सामने कितने विघ्न आए थे, एक सतमार्ग का उसने संकल्प लिया कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मुझे केवल एक व्रता होकर के रहना, एक के साथ ही रहना है। जबरदस्ती उसकी शादी कर दी गई और उसके बाद भी उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा कि नहीं मैंने तो एक से कर ली है, मूर्ति से ही कर ली है, लेकिन मैं उसके सिवाय और कोई की नहीं। कितने विघ्न आए, एक के बाद एक विघ्न, सारी राणा फैमिली विरोधी हो गई, जहर का प्याला भेजा, सांप की टोकरी भेजी, मार दो इसको, खत्म कर दो, कोई का प्रभाव नहीं पड़ा। पी लिया अमृत, अमृत बना करके जहर को भी। उसकी लगन थी कि मेरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। भले श्री कृष्ण को भगवान मान रही है, हम सब के साथ कौन है? अगर बाबा को ऐसे साथी बना करके हम सदा साथ रखेंगे, हमारी लगन बढ़ती जाएगी। कुछ भी हो जाए, मेरा बुद्धि योग बाबा से कभी न टूटे। अगर बाबा से यथार्थ बुद्धि योग जुटा हुआ है, सदा उसको हम साथ रख करके चल रहे हैं, विघ्न डालने वाले डालेंगे, अपने आप चले जाएंगे, हार जाएंगे। सब विघ्न खत्म हुए हैं। यज्ञ के आगे क्या नहीं आया? एक छोटे परिवार के आगे तो कितनी बातें आएंगी, बाबा के इस बेहद यज्ञ के आगे तो हर प्रकार के पेपर आए। लेकिन आज कहां से एक छोटा सा बीज आज इतना बड़ा वट वृक्ष बन गया है। ब्रह्मा बाबा अगर उस समय डर गए होते, कैसे होगा, सारा समाज विरोधी, बाबा के संबंधी विरोधी, सब कोई दुश्मन की रीति से खड़े हैं सामने, सब सामने सामने गालियां दे रहे हैं, इसने तो मेरा घर फिटा दिया, इसने ये कर दिया, ये कर दिया। कहां इतना सम्मानजनक व्यक्तित्व तो ब्रह्मा बाबा का लौकिक में। और शिव बाबा आए और ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं चले हो क्या रहा है। मेरे मुख से कोई बोल जाता है, मेरी दृष्टि से कौन देख लेता है? जो इसको सबको स्वर्ग का अनुभव होता है, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, और सब उसके कारण नियम मर्यादाएं सब अपने आप पालन करने लगे। अब जब नियम मर्यादाएं पालन किया तो विरोधी हो गए सारे घर वाले, ये कौन सा नियम है? अभी अभी शादी करके आए, मैं तो ब्रह्मचर्य में रहूंगी, मैं तो शुद्ध शाकाहारी भोजन खाऊंगी, बनाऊंगी नहीं, घर में नहीं आने दूंगी। बहुत नशा था उस समय, स्थापना के समय, सारा समाज विरोधी। बाबा को समझाने के लिए कितने लोग अलग अलग आए, बाबा ये क्या आप कर रहे हो, आपका ज्ञान बड़ा अच्छा है, ज्ञान दो, लेकिन ये पवित्रता की बात नहीं करो, ये शुद्ध शाकाहारी भोजन की बात नहीं करो, नहीं तो आपको रहने नहीं देंगे यहाँ। बच्ची मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ये कहने वाला कौन है मुझे भी पता नहीं, यहाँ से मुख से बोल के चला जाता है और ये बच्चे पालन कर रहे हैं। बाबा ने हर बात का सामना किया। चलो वहां तक तो कराची हैदराबाद की बात छोड़ो, बहुत सारे ऐसे पैसे वाले भी समर्पित हुए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी आर्थिक प्रॉब्लम आई, शारीरिक प्रॉब्लम आई, स्थान की प्रॉब्लम, कोई घर नहीं मिले, भरतपुर राजा के कोठी लिया, वहाँ पर अनेक प्रॉब्लम आने लगी। फिर बदली तो धौलपुर हाउस गए, कोटा हाउस गए, जहाँ जाए थोड़े दिन के बाद नोटिस, खाली करो इसको, अपना स्थान ही नहीं। आबू की बात है, 53-54 तक एक पेपर नहीं है, सैकड़ों पेपर बाबा के सामने। और इतनी सब बहनें हैं, कहाँ जाएंगी? भाई तो कुछ गिने चुने थे, 5-7 भाई थे और 350 के लगभग बहनें, बहनों की संस्था। फिर भी बाबा निडर, निर्भय, निश्चिंत, शिव बाबा का कार्य चल रहा है, वो कराएगा, लगन कम नहीं होने दी। हर विधि को अपनाया, योग से ठीक किया, विधि योग ही है, ध्यान देना। एक बार ऐसे ही हंसी में, जैसे कोई बोल जाता ना, त्योहार का दिन था, होली का दिन था, अब शिव बाबा मुरली चलाते चलाते बोल गए, बच्चे होली पर तो जलेबी का भोग लगता है, कल बच्चों के लिए जलेबी का भोग बनेगा। अब बाबा बोल के चला गया, भंडारे वाली दौड़ के आ गई, बाबा आपने क्या बोल दिया, यहाँ तो खाने के लिए आटा ही नहीं है, ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, और जलेबी का भोग कैसे लगेगा सवेरे सवेरे वो भी। अब ब्रह्मा बाबा तो बड़ा न्यारा प्यारा, बच्ची मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, शिव बाबा बोल के गया। अब शिव बाबा बोल के गया तो जरूर खिलाएगा ना, लेकिन विधि है। 2 बजे सब बैठ करके योग करो आज। अब 2 बजे योग में बिठा दिया, पहले भरतपुर कोठी, ब्रज कोठी जिसको कहते हैं, वहीं रहते थे, बेगरी पार्ट वहीं चला पूरा टाइम। और ज्यों योग में बैठे, लाल लाइट हुई, सामने एक परिवार सिंधियों का रहता था, पति तो बड़ा एंटी था, उसके युगल भाग भाग के कभी छिप के क्लास में आ जाती थी, उसकी नींद फिटी और युगल को उठा के कहता, देख तेरे दादा को आज क्या हो गया, त्योहार के दिन भी बच्चियों को सोने नहीं देता, योग में बिठा दिया, और मेरे कहता तेरी अलमारी में कितना रखा अभी ले आ, देख अलमारी में कुछ है क्या, जो है बांध करके दे आ जा करके, अरे सवेरे दे दूंगी, नहीं नहीं सवेरे तक बुद्धि बदल जाएगी, अब भी जा जो सामने रखा अलमारी में सब उठा के ले जा, सब पोटली बनाई पैसे की जो उसकी अलमारी में रखा था, रात कोई लेके आई दादी की, सामने कोई दादी मिली, अरे तुम इतने टाइम क्यों आई, तेरा पति मारेगा, तेरे लिए योग नहीं अभी, अरे उसको नींद नहीं आ रही, ये ले लो मैं जाती हूँ वापस, और सवेरे सवेरे समय पर सब चीजें आई, भोग लगा, जलेबी सब बच्चों ने खाई, ऐसा था बाबा, लेकिन विधि को नहीं छोड़ा, कोई भी बात आई हमारी दादी के सामने भी, यहां जब बाबा के अव्यक्त होने के बाद बहुत सारी बातें आई छोटी मोटी, दादी कहती थी जो इंटरेस्टेड हैं, सबको नहीं कहती थी, जो योग करना अच्छा अनुभव करते हैं आ जाओ सवा दो बजे योग करेंगे, हफ्ते में एक दिन मधुबन में 2 बजे योग जरूर हो जाता था, 10-15-20 भी आ जाते थे, दादी खुद आके सामने बैठ जाती, कुछ कमेंट्री देती ऐसे लक्ष्य देती और सब योग करते, 3-3, 4-4 दिन लगातार कभी कभी योग रख देती, एक दो बार ऐसी बातें हुई, दादी कोई कारण था क्या, हाँ कारण था, निवारण हो गया, कारण का वर्णन नहीं करूं, ये कारण है ऐसा हुआ वैसा हुआ, कई योग में भी वही सोचते रहते, योग एक इतनी बड़ी शक्ति है, अगर पवित्र संकल्प है, बाबा के साथ कनेक्ट संकल्प है, तो वो संकल्प एक आभा मंडल क्रिएट करते हैं, एक ओरा बनाते हैं, और वो जहां भी पहुंचता है वो वहां के विघ्न खत्म कर देते हैं, इसलिए बाबा की याद एक ऐसी विधि है जो हर प्रकार की समस्या को सहज हल कर सकती है, और हमारी सब दादियों ने इस विधि को शुरू से अपनाया, चाहे रामलीला ग्राउंड की बात है, जब पहला मेला दिल्ली में हुआ है, नहीं दूसरा मेला जब था लाल किले का, उस समय कोई रसिया का राष्ट्रपति आने वाला था, इंदिरा गांधी जी का राज था, बोला इस ग्राउंड में तो रसिया का प्रोग्राम होगा, दादी ने कहा तुम रात भर में देवियों का मूर्ति खड़ा कर दो, नोटिस है कि कल आपको ये मैदान खाली करके देना है, मेला हमारा लग रहा है और राष्ट्रपति का प्रोग्राम होगा, रसिया का आ रहा है, दादी ने कहा सब बैठ जाओ योग में, पूरी रात योग किया, दूसरे दिन वो आए, उनके ऑफिसर्स देखे यहां तो देवी की मूर्ति खड़ी कर दी इन्होंने गेट पर, जाके सुनाया नहीं उनकी तैयारी हो गई है, उनको हटाना ठीक नहीं है, आखिर उनका स्थान चेंज हुआ, अपना वहीं पर मेला हुआ, विधि थी योग की विधि, तो हम सब बाबा के बच्चे यथार्थ विधियों को अपनाएं, अगर मान लो कहीं बार बार हार हो रही है, कोई नुकसान हो रहा है, सफलता हमारा जन्म से अधिकार है फिर भी सफलता नहीं मिल रही, तो कम से कम बात अपने को चेक तो करो क्यों नहीं मिल रही, कहीं हमारा संकल्प बोल कर्म तन मन धन कहीं व्यर्थ में तो नहीं जा रहा है, विधि है सब कुछ सफल करो तब सफलता मिलेगी, अगर हमारा बोल सफल हो रहा है, हमारे संकल्प सफल हो रहे हैं, हम हर विधि पूर्वक अपने संकल्प बोल कर्म कर रहे हैं, तो सफलता हमें नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी, अगर नहीं दिखाई दे रही नहीं मिल रही है तो जरूर चेक करना चाहिए कहीं ना कहीं विधि में कमी है, और बाबा ने अपने बच्चों पर यही कृपा की है, कहता मैं और कोई आशीर्वाद नहीं करता, मैं बच्चों को जो पढ़ाता हूं यही मेरी कृपा है, यही मेरी आशीर्वाद है, बाबा की पढ़ाई ही विधि है और प्रारब्ध उसकी सिद्धि है, इसलिए बाबा की पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना, कोई प्रारब्ध प्राप्त करके कहे इनको पता नहीं इतना कैसे सब प्राप्त हो गया, शायद ऐसा तो नहीं इधर उधर कुछ रिश्वत ली हो, कुछ ऐसा किया हो, इसलिए इनको इतना सब मिल गया। बाबा कहता है तुम उससे भेंट कर रहे हो, जरूर वो किसी जन्म में अगर कोई दान पुण्य किया है, कुछ श्रेष्ठ कर्म किया है, तो उसको उसका रिटर्न मिलेगा। भक्ति काल के अंदर भगवान ने विधि बनाई, राजाई प्राप्त करने की विधि। जैसे बाबा कई बार कहते हैं, अगर कोई किसी के सुविधा के लिए धर्मशाला बना देता है तो अगले जन्म में उसको अच्छा महल मिलता है, अगर किसी के लिए उसने हॉस्पिटल बना दिया तो अगले जन्म में उसको निरोगी काया मिलती है, अगर किसी ने कॉलेज स्कूल बना दिया तो उसको अगले जन्म में अच्छी विद्या मिलती है। ये विधि और सिद्धि है, ये विधि अपनाई उसको प्राप्ति हो गई। द्वापर और कलयुग में राजाई जो मिली राजाओं को, उसकी विधि क्या थी? दान पुण्य। उन्होंने खूब दान किया, दूसरों को दिया, गरीबों में बांटा, तो उसके रिटर्न में उनको राजाई मिल गई। लेकिन सतयुग की राजाई की विधि क्या है? पढ़ाई, योग। वर्तमान समय जिस आत्मा ने जितनी अच्छी तरह से पढ़ाई की है, पढ़ाई में भी क्या है, यही तो पढ़ा, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये अगर यथार्थ रीति से ने कोई पढ़ लिया कि मैं तो एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, और ये जो मेरा मेरा मैंने बना के रखा है सब फेरा है, ये मेरा नहीं है, ये थोड़े समय के लिए खेल पाठ बजाने के लिए मिला है, मेरा तो एक बाबा है, दूसरा न कोई। अगर केवल मैं और मेरे को भी बदल लिया, विधि पूर्वक चिंतन कर लिया, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इस पढ़ाई के आधार से वो कर्म इंद्रियों का राजा बन गया। कोई कर्म इंद्रिय उसको परेशान नहीं कर सकती, धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि आत्मा मालिक है। तो बाबा ने अपने बच्चों को विधि बताई कि बच्चे सवेरे सवेरे अपने अकाल तख्त पर बैठ जाओ, इस शरीर की मालिक मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूं, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, भटक नहीं सकता। तो जितना इस विधि को इसने अपनाया उतना उसको सिद्धि मिली, उसने अपनी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। उस आत्मा से कोई विकर्म नहीं हो पाए होगा, क्योंकि कर्म इंद्रियों पर उसका कंट्रोल है, मन का वो मालिक है, कभी नहीं कहेगा मैं चाहता नहीं था, मेरे से हो गया। पर वश स्थिति हमारी समाप्त हो जाए, विधि अपना लो, यथार्थ पढ़ाई अगर पढ़ ली, स्वयं को और बाबा को यथार्थ समझ लिया, तो सब प्रकार की सिद्धियां, आत्मा इंद्रिय जीत है, विक्रमा जीत है, माया जीत है, और वो कर्मातीत स्थिति को पा लेती। अब कर्मातीत स्थिति प्राप्त करने की विधि क्या बताइए, बोलो, कर्म छोड़ दो, सब कुछ करो, करने की कोई मना नहीं है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते। सांस ले रहे हो भी कर्म है, बोल रहे हो भी कर्म है, चल फिर रहे हो भी कर्म है, कर्म संन्यास कहाँ है। कर्म करो लेकिन वो कर्म बंधन न बने, कर्म किया और समर्पित कर दिया, फल की इच्छा भी नहीं रखी, बाबा शुक्रिया आपने करा लिया। जहां कर्तापन का भान आया वहां पर बंधन शुरू हो गए, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं नहीं करता, शायद कोई करता ही नहीं, ये बंधन आ गया। कोई सेवा के बंधन में, कोई संबंधों के बंधन में, कोई संस्कारों के बंधन में बंधते जा रहे हैं, आए हैं पढ़ाई कर रहे हैं बंधन मुक्त बनने की। सबसे बड़ी सिद्धि संगम युग की है, हम सब कर्म करें लेकिन कोई भी कर्म हमें बंधन में न बांधे। चाहे जितने अच्छे अच्छे कर्म कर लो, लेकिन वो कर्म है, मेरा ही कर्म है, मुझे ही करना है, बंधन हो गया। शुक्रिया बाबा आपने सेवा कराई, ये कर्म करा लिया। इसलिए कहते हैं कर्म करो और कर्म को समर्पित करो, मैंने नहीं किया, बाबा आपने करा लिया, आपने निमित्त बना करके मेरा भाग्य बना दिया। जितना निमित्तपन का भाव आया, निर्माण हो गए, निमित्त बनने से निर्माणता की सिद्धि मिल गई। समझ गए? मैंने नहीं किया, बाबा ने करा लिया। जहां मैं आता, मैं करता हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं अनुभवी हूं, मेरे बिना हो ही नहीं सकता, वहां अहम भाव आ गया, वहां टकराव शुरू हो गए, वहां मतभेद हो गए, वहां तेरा मेरा पैदा हो गया। विधि गलत, सिद्धि ठीक नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। गए थे सेवा करने, टकरा करके आ गए मूड खराब करके। बेहद की सेवा कराने वाला बाबा, सब नाम बाला कर रहे हैं बाबा का। एक हमारे जगदीश भाई ने एक बड़ी अच्छी रमणीक कहानी लिखी थी। जगदीश भाई को तो जानते हो ना, सभी दिल्ली वाले जानते हैं ना। जगदीश भाई की सारी पुस्तकें हैं। तो उन्होंने कहा, एक गुरु जी थे, गुरु जी के दो चेले बड़े भावना वाले थे। जब गुरु जी विश्राम करने जाते तो चेले एक एक टांग ले लेते दबाने के लिए, कि ये टांग मेरी, ये टांग मेरी। तो गुरु जी बड़े प्यार से लेटे रहते और चेले लोग अपना एक एक टांग की सेवा करते, दबाते, पालिश करते। तो एक दिन गुरु जी ने ये टांग को थोड़ा सा इधर से इधर कर लिया। तो जो एक इस टांग को दबा रहा, भाई मेरी टांग है, उधर क्यों गई, खींचा जोर से। दूसरे ने तो जब टांग इधर उधर गुरु जी करें तो दोनों आपस में लड़ जाएं, ये मेरी टांग उधर क्यों गई, तेरी टांग उधर क्यों गई। एक दिन लड़ते लड़ते कहने लगे, अगर उधर गई तो मैं काट दूंगा इसको। अब गुरु जी डर गए, टांग मेरी है, और सेवा करते करते आपस में लड़ गए। आजकल यही चल रहा है, सेवा बाबा की है, कार्य बाबा का है, प्रत्यक्ष बाबा को करना, मेरी एरिया तेरी एरिया, मेरी टांग तेरी टांग। ध्यान देना, चले हैं सेवा करने और बदनाम होकर के आ जाते हैं, मूड खराब करके, खुशी गायब करके। किसके लिए कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? नाम हो जाए, महिमा हो जाए, मेरे सेंटर बढ़ जाए, मेरे स्टूडेंट बढ़ जाए। इस मेरे मेरे का त्याग करना पड़ेगा। अगर बहुत सरल, निश्चिंत, एक रस, खुशनुमा स्थिति बनानी, देखो दादियों को। अभी लंदन में थी, बाबा ने कहा आ जाओ बच्ची बैठ जाओ। लंदन भूल गई, विदेश भूल गई, जानकी दादी की बात करो। बेहद में सब अपने हैं, कोई ऐसा नहीं बांध ले हमें। सेवाएं साधन जो है, अगर कोई को बंधन बांध रहे हैं, अपने अंदर बंधन बना रहे हैं, वो कर्म बंधन है, वो यथार्थ सिद्धि नहीं, वो कर्मातीत बनने नहीं देगी। कर्मातीत की सिद्धि उसको प्राप्त होगी जो हर कार्य करते हुए भी कर्म बंधन की रस्सियों से फ्री है, मुक्त है। सब बाबा का है, बाबा कराने वाला है, करण करावनहार स्वामी है, और उसकी ये प्रभु लीला चल रही है। देखो साक्षियों के, जो भाग्य मिलता है, जो चांस मिलता है, उसको छोड़ो नहीं, करो, लेकिन उस बंधन में नहीं बन जाओ। यही सेवा मेरी है, यही साथ बाबा कहता है, इसके बंधन में, इस बंधन से मुक्त बनो तो कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। तो जितनी सिद्धियां हैं, अगर सफलता नहीं मिल रही, निश्चय को देख लो, कहीं ना कहीं निश्चय में कमी है, स्वयं के निश्चय में कमी है, बाबा में निश्चय की कमी है, ड्रामा के निश्चय में कमी है, ये हमारा परिवार है, उस परिवार के निश्चय में कमी, कोई न कोई निश्चय की कमी हमें विजयी बनने नहीं देगी। अगर विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, विजयी बनना है, तो सब अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनशयंती। निश्चय विधि है, विजय उसकी सिद्धि है। सफलता नहीं मिल रही है तो मैंने कहा सफल करो तो सफलता मिलेगी, लेकिन एक स्लोगन बाबा दूसरा देता है, अगर संकल्प में दृढ़ता है तो दृढ़ता ही सफलता का आधार है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। सफलता नहीं मिली क्या करूं, बाबा कहते कमजोर संकल्प तुम छोड़ दो। कमजोर संकल्प ही हमारे लिए रुकावट है, विघ्न डालते हैं। मैं किसका बच्चा हूं, किसकी सेवा करने के लिए जा रहा हूं, क्या मेरा अपना पर्सनल कोई स्वार्थ है? अगर मेरी अपनी कामनाएं हैं तो अनेक प्रकार की रुकावटें आती हैं, जहां मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, एक बाबा से लेना है और बाकी सबको मैं देने वाला हूं। उस स्मृति में रहो, मेरे को बाबा ने दाता बनाया है। जब मैं विदेश जाने लगा ना, तो अमेरिका के उसके वीजा के लिए यही 2-3 प्रश्न थे उनके, और मुझे ये नशा था, सामान था। लोग आपको कुमारों को बैचलर को देते नहीं है लोग वीजा, छोड़ो हम दादी भेज रही है हम जाएंगे। प्रश्न पूछा, बैचलर हो? हमने कहा ब्रह्मचारी। कौन संभाल, कहाँ आपका बैंक अकाउंट है? दे दिया ब्रह्मा कुमारी का। सब बातें हो गई और अंदर का सामान था, मैं वहां से कुछ लेने नहीं जा रहा हूं, मैं तो उनको देने जा रहा हूं। शांति चाहिए, प्यार चाहिए, अपनत्व चाहिए, जो कमी है उनको हम बांटने जा रहे हैं, हमको क्या उनसे चाहिए। बाबा ने हम सबको इतना दिया है, हम सब दाता बन करके रहे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें मंगता नहीं बनाया जाता, हमें दाता बनाया जाता है। और देना सीख जाओगे तो अपने आप देवता बन जाओगे, सब कुछ भरपूर हो जाएगा। जो शक्ति है, दृष्टि से दो, बोल से दो, अच्छे वाइब्रेशन से दो, अपनी अनुभवों से दो, दो जरूर, जो आपके संबंध संपर्क में आए, कुछ न कुछ दे दो। दो मीठे शब्द ही बोल दो, सम्मानजनक बोल ही बोल दो, मीठी दृष्टि दे दो, मुस्कुरा करके देख तो लो, अच्छे वाइब्रेशन दे दो, आपका हर कार्य हो जाएगा। हमारी गुलजार दादी बड़े प्यार से, अरे मुस्कराने में थोड़ी खर्चा होता है, थोड़ा मुस्कुरा के बात तो करो। हम सबको बाबा ने मुस्कराना सिखा दिया। एक बार हम एक जगह गए ना, कोई मुस्कुराता ही नहीं था, वो ढाका में गए, बंगाल में, बांग्लादेश में। तो हमने कहा भाई ये गीत बजाओ, पहले क्लास में बैठे थे 150-200 लोग, तो हमने कहा गीत बजाओ। किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कराना सिखा दिया, तो गीत बजवाया मैंने। फिर मैंने बोला आप लोगों के चेहरे देख के ऐसा लगता है कभी मुस्कुराते नहीं हो आप लोग, ऐसे बैठे थे। मैंने कारण निकाला, हमने कहा ऐसा कारण क्या है आखिर? तो पता है कारण क्या था? मैं जब गया ना, मैं भी गाड़ी में जब गया तो वहां ट्रैफिक इतनी जाम, और जिस गाड़ी में था ना उसका जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था ना, वो स्टीयरिंग पर ऐसे सिर रख के सो गया। हमने कहा भाई कब चलोगे, हमको पहुंचना है, वहां प्रोग्राम है हमारा। कहता है बाबूजी जाम लगा है। हमने कितने देर में खुले? बोला पता नहीं, 4 घंटा 6 घंटा कितने देर खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए मुझे सो लेने दो। वो तो उदास बेचारे, जो क्लास में आए वैसी हालत उनका भी। आ तो गए, जाएंगे कैसे, ऑफिस में कैसे पहुंचेंगे, टाइम पर कैसे पहुंचेंगे। तो सबके चेहरे उलझे हुए, मुस्कुराए नहीं कोई। कोई कारण तो बनते हैं, आजकल ट्रैफिक कैसे कारण हो जाते हैं शहरों में, तो जाना कहाँ है, कब पहुंचेंगे मालूम ही नहीं, संकल्प चलते रहते हैं। तो बाबा कहता है इस कलयुग के इस दृश्य को भी साक्षी होके देखो, इसमें भी मुस्कुराना सीख जाओ। कलयुग है ना, ये तो सब अति में जा रहा है, अति के बाद ही तो अंत होगा, ये सब अंत की तैयारी है, होने दो इसको। इसलिए अगर ज्ञान यथार्थ रीति से किसी ने समझ लिया है तो ज्ञानी तो आत्मा कभी भी उदास, निराश, हताश नहीं होती किसी भी सीन में, और नथिंग न्यू करके अपनी स्थिति को एक रस खुशनुमा रखती है। तो हमारी स्थिति सदा खुशनुमा रहे, एक रस रहे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे, कैसी भी परिस्थितियां हैं उसमें हमारी स्थिति एक रस रहे। आप सब इस बात को अंडरलाइन करना, इस भट्टी से एक वरदान बाबा से जरूर लेके जाना, क्योंकि परिस्थितियां अभी दिन प्रतिदिन बिगड़ रही हैं और बिगड़ने वाली हैं, लेकिन उनमें हमारी स्थिति हलचल में ना आए। ऐसी एक रस खुशनुमा अचल अडोल स्थिति बन जाए, ये सिद्धि प्राप्त करके जाओ। और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियों में रहो, ऊंचे ऊंचे सामान में रहने का अभ्यास करो। बाबा ने इतने सारे सामानों की माला पहनाई है, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, जितने बाबा के टाइटल हैं उतने हम सबके सामान हैं। और उस सामान की स्मृति में रहने से कोई भी बात वर्तमान की देखेंगे ठीक है, पार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए वर्तमान में हम सब देख रहे हैं दुनिया की हालत, प्रकृति के तरफ तांडव हो रहे हैं, प्रकृति अपना खेल कर रही है, व्यक्तियों के अंदर गुस्सा इतना है, विकार इतने फोर्स के हैं। कोई ऐसे देख ले, कोई ऐसा आपकी गाड़ी को अगर थोड़ा सा क्रेच लगा दे, आप थोड़ा सा बोल के देखो, उसी समय खून खराबा कर लेगा, मारपीट हो जाएगी। इतना अंदर अंदर लोगों के अंदर भूत भरा हुआ है, सब भूतों के परवश हैं। और बाबा ने हम सबको इन भूतों से मुक्त कर दिया। कोई भूत तो नहीं है ना किसी के पास, सबसे बड़ा भूत भूत ना बीती भूतकाल की स्मृति, भूतकाल की स्मृति। जो बीत गई उसको क्यों बार बार याद कर रहे हो, भूत है ना वो तो, भूतकाल। दूसरा भूत है काम क्रोध का, जो अंदर अंदर सबको परेशान कर रहा है। तो उस भूत से और इस भूत से तो मुक्त हो जाओ, बाकी भटकती हुई आत्माएं हमारा क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको तो शरीर ही नहीं, वो खुद भटक रहे हैं। हम अपने ऊंचे स्थिति में अपने सम्मान में रहें, बाबा के साथ रहें, लाइट के घेरे में रहें, वो कोई भी आत्माएं हों कैसी भी हों हमको कोई परेशान नहीं करती। तो अपनी विधि पूर्वक जो बाबा ने हमें बताया है, तीन छतरियां अगर सबके साथ रहती हैं तो कितना भी नेगेटिव वातावरण हो, कैसी भी हालतें दुनिया की हों, हमारे ऊपर उसकी सेक नहीं आ सकती है। एक है बहुत सकारात्मक चिंतन, बहुत अच्छे अच्छे पवित्र संकल्पों की ओर आभा मंडल, वो हमारी छतरी है। साधारण संकल्प नेगेटिव संकल्प करने नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब अच्छा होगा, बाबा की मुरली पढ़ो और उसके अनुसार अपने संकल्पों की क्वालिटी को बहुत ऊंचा सकारात्मक बना लो। अच्छा चिंतन हमारी सेफ्टी का पहला साधन है। दूसरा है हमारा बाबा और हमारा परिवार, हर आत्मा से हमारे प्रति दुआएं निकले, हम इतने सपूत आज्ञाकारी बन करके रहें, सबको समय पर साथ दें, सहयोग दें, मिलनसार बन के रहें, उनकी दुआएं हमें मिले, वो दुआएं हमारे लिए छतरी बन जाएंगी। और तीसरा बाबा की याद, जहां भी जाओ बाबा सदा साथ साथ रहे, अलग ना हो, तो हमारे लिए वो छत्र छाया बन जाएगी। कैसी भी बातें होंगी बाबा साथ है, विधि बताएगा, युक्ति बताएगा। कई बार बाबा कहता है मैं तो बच्चों को टच करता हूं, लेकिन ये मेरे बच्चे बुद्धि को इतना इंगेज रखते हैं जो मेरी टचिंग को कैच नहीं करते। बाबा तो टच कर रहा है, किसको नहीं टच करेगा, बच्चे हैं उसके हम, बच्चे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, यहां नहीं यहां जाओ, लेकिन हमने अपनी बुद्धि को व्यर्थ से इधर की उधर की बातों से बिजी रखा है, तो बाबा की टचिंग को हम कैच नहीं करते। अगर बाबा की टचिंग को कैच करेंगे तो कभी भी इस मार्ग में ब्राह्मण जीवन में असफलता नहीं हो सकती। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हर बाबा का बच्चा सिद्धि स्वरूप है। इसलिए सोच समझ के बोलना किसी के लिए भी, सिद्ध हो जाएगा तो ऐसा ना हो श्राप भी सिद्ध हो जाए। श्रापित करने वाले बोल हमारे मुख से न निकलें, ऐसा कोई संकल्प न उठे जो हमारा और दूसरों का कल्याण कर दे। हम बाबा कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं, तो सिद्धि स्वरूप आत्माएं हो, अमृत वेले से रात तक विधि पूर्वक चलते रहो। और विधि है श्रेष्ठ मत, श्रीमत, जो आज बाबा ने कहा अगर कोई मेरा बच्चा इस समय श्रीमत पर चलेगा तो भविष्य में उसे किसी की मत राय लेने की जरूरत नहीं है, कोई उसको वजीर नहीं चाहिए, कोई उसको सलाहकार नहीं चाहिए, अगर संगम पर वो भगवान की श्रीमत पर चला है। अब श्रीमत विधि है और सिद्धि आधा कल्प के लिए उसको प्राप्त हो गई, किसी की राय की जरूरत नहीं है। तो ऐसे विधि और सिद्धि को और देख चिंतन करना, सब प्रकार की विधियों से आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। ओम शांति।
यथार्थ विधि से योग लगाए सर्व सिद्धियों को हम पाए, एक परमात्मा एक ही लक्ष्य मन बुद्धि को वही टिकाए, ज्ञान हमारा दीप बने योग बने आधार, पवित्र कर्मों से जीवन में आए शक्ति अपार। विचारों को छोड़ चले शुभ संकल्प अपनाएं, हर परिस्थिति में शांत रहकर स्वयं को शक्तिशाली बनाएं, दृष्टि में पवित्रता हो वाणी में मधुरता, कर्मों में हो श्रेष्ठ भावना, हृदय में हो निर्मलता, जो जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही संसार बनेगा, आत्मविश्वास की शक्ति से हर मुश्किल आसान